उनकी भी ऐसी इंसानी जरूरियात थी जैसी हमारी हैं, उनकी भी औलादें इसी तरह उनको प्यारी थी जैसे हमें हैं। इसीलिए मैंने इन खातून की, उम्मे हारसा की मोहब्बत की पहले आपको बात बताई है, ताकि आप ये ना समझे कि पता नहीं वो तो कोई एलियन लोग थे जिनको ना किसी से मोहब्बत होती थी, ना उनके दिल में कोई जज्बात थे, सारी मोहब्बतें तो बस हमें ही हैं अपने बच्चों से। नहीं, वो भी हमारे जैसे ही इंसान थे और उनकी भी ख्वाहिशात थी, लेकिन देखो उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को कैसे शिफ्ट कर दिया था। आखिरत में लेना था उसने, उन्होंने सब कुछ, हमने सब कुछ कहाँ लेना इस दुनिया में, हमें सब यहां पे चाहिए। वहां पे मिले ना मिले, मिल गया तो ठीक है, ना भी मिले तो चलो यहां तो मिल जाए ना। लेकिन वो क्या कहते थे, यहां मिले ना मिले बस वहां जरूर मिल जाए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ऐसा ईमान लेकर आओ, मुझे तो ये ईमान चाहिए, ये ईमान लाओगे तो तुम हिदायत याफ्ता हो, और ये ईमान नहीं है तो हिदायत नहीं है तुम्हारे पास अभी भी। शुरू में हमने पढ़ा था ना कि कुछ लोग कहते थे कि हम ईमान वाले हैं, मगर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो ईमान वाले नहीं है, वो तो मुनाफिक है शुरू की आयात में ना। तो अपने आप को खुद ही ईमान वाला कह देने से ईमान वाला नहीं कोई हो जाता, ये हमारे बोलने से नहीं हम ईमान वाले बन जाते, हमारे दावों से नहीं बनेंगे। फरमाया ना, वमिन अन्नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह का फैसला है वो मोमिन नहीं है। तो ईमान जो अल्लाह को मतलूब है, जो वहां पे चाहिए, अगर हमारे पास वो ईमान नहीं है तो हमारे दावों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कितना ही स्ट्रांगली इस चीज को ये कहूं कि मेरा ईमान है, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। इसीलिए इन लोगों की जो जिंदगियां हैं हमें सामने रखनी है, ये लोग कैसे थे, क्योंकि जब हम ये जानेंगे कि ये लोग कैसे थे, इनकी जिंदगियां कैसी थी, तभी तो हम इनके जैसा ईमान ला सकेंगे, क्योंकि ये है हमारे रोल मॉडल्स। हमें इसीलिए सहाबा के हालात पढ़ने चाहिए, और पढ़ाए जाए तो उस पर एतराज नहीं करना चाहिए कि सहाबा के हालात पढ़ के हमने क्या करना है, हमें क्यों इनकी बातें बताई जा रही हैं। नहीं, ये तो इनके जैसा ही तो हमने ईमान लाना है, ये आम लोग थे, इनके पास कोई वही नहीं आती थी। अंबिया के पास तो वही आती है, आती थी, मगर इनके पास तो कोई वही नहीं आती, ये मेरे और आपके जैसे ही इंसान थे ना, या नहीं? कौन सा फरिश्ता इनके पास आता था, फिर भी इनके ईमान का ये लेवल था। और अल्लाह ताला किसी से भी वो चीज नहीं एक्सपेक्ट करते जो कि उसकी ताकत से बाहर हो, जो वो ना कर सके, ठीक है। अल्लाह ताला ने जब हमसे ऐसा ईमान को रिक्वायरमेंट रखा हमारे लिए, तो इसका मतलब हम कर सकते हैं, तभी हमसे ये मांगा गया। और कुरान के मतलूब भी ऐसे ही लोग हैं, ठीक है। और इसी तरह सूरह फतह के एंड में भी सहाबा कराम की सिफात बयान की गई कि वो कैसे थे, आपस में उनके ताल्लुकात कैसे थे, आपस में इतने एक दूसरे से शफीक और रहीम थे, और काफरों के लिए क्या थे, फर्म थे, सख्त थे। ये नहीं ये काफरों के सामने बस इस तरह से हो जाए, नरम पड़ जाए कि हाँ जो ऐसे आप कहते हम भी वैसे ही कर लेंगे, आपके रंग में रंग जाएंगे, नहीं। वो लोग पार्ट टाइम मुसलमान नहीं थे जैसे हम आज पार्ट टाइम मुसलमान हैं, फुल टाइम नहीं है ना, सारा दिन तो अपनी मर्जी से गुजारना, बस थोड़ी देर के लिए मुसल्ले पे खड़े हो गए, या बस थोड़े चंद एक कुछ कुछ काम कर लिए और हमने सोचा हम बहुत ईमान वाले हैं, तो पार्ट टाइम मुसलमान है, थोड़ी देर के लिए मुसलमान बन जाते हैं। वो होती ना चेपियां, जिसको कहते हैं चेपियां लगाई हुई हमने ईमान की, पैच वर्क, पैचेस, एक खाना दीन का भी रख लिया ताकि दीनदार कहलाएं लोगों की नजरों में, दीनदार बन जाएं, तो इसलिए एक पैच दीन का भी लगाया हुआ, ये दीन नहीं मतलूब, ये दीन, ऐसा ऐसा ही मान लाओ। वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक, फिर अगर वो मुंह मोड़े तो वो शिकाक में है। शिकाक क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, जिद, मुखालफत, जिद्दम जिद्दा, जैसे है ना, जिसको कहते हैं कि मैं ना मानू, मैंने मानना ही नहीं है। जैसे किसी से इतना बैर हो जाए, इतनी नफरत हो जाए कि बस अब वो ठीक भी कहे, सीधी भी बात कहे, तो मैंने नहीं माननी। तो ये असल बात ये है कि अगर ये ऐसा ईमान नहीं लाते ना, उनको कहा जा रहा है जिनको ईमान के लिए दावत दी गई, यहूदो नसारा को, कि अगर ये फिर भी मुंह मोड़ते हैं, इनको कहा गया आओ ईमान ले आओ, और ऐसा ईमान लेकर आओ, ये है तुम्हारे सामने लोग, इनके जैसा ईमान लाओ। तो अगर ये नहीं लाते तो ये जिद में है। ये नहीं है बात कि इनको समझ नहीं आया, बस मानना ही नहीं। जब इंसान ने फैसला कर लिया मैंने नहीं मानना, तो फिर कौन उसको मना सकता है? फसयकफीकहुमुल्लाह, ए नबी, फिर अन करीब काफी होगा तुझको अल्लाह उनसे। ए नबी, फिर आप ना इतना दिल थोड़ा करें, आप ना गम खाएं, अल्लाह आपके लिए काफी है, आप मुतमईन हो जाएं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कितनी फिक्र करते थे, कितनी परेशानी करते थे ना। तो ए नबी, इनके मुकाबले में अल्लाह ही आपको काफी है। ये वो अल्फाज हैं जब हजरत उस्मान की शहादत हुई थी, लोग उनके घर में दाखिल हो गए थे, तो उस वक्त वो कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे, रोजा था उनका और कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। तो जब उनको शहीद किया गया था ना, तो कुरान खुला हुआ था और उनका खून का फवारा निकला और इन अल्फाज पे जाके पड़ा, फसा यकफी का हुमुल्ला, वाकई अल्लाह ही काफी है उनके लिए। जिस तरह उनको जुल्म के साथ शहीद किया गया। तो देखिए, और भी आयतें थी, कोई और पेज हो सकता था, कोई और मुसफ में, कई किसी जगह से भी वो पढ़ रहे हो सकते थे, लेकिन यहां पे उनका खून गिरा और उसका जो धब्बा पड़ा है, आज तक भी वो मुसफ जो है ना, टर्की में एक म्यूजियम है, वहां पे पड़ा हुआ है, और उसमें इसी तरह वो खून का धब्बा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह वाकई ऐसे लोगों के साथ जो अल्लाह के मुखलिस होते हैं, उनके लिए काफी हो जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गारे सौर में थे, तो काफिर आ गए थे, सरों पे आके खड़े हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने देखा मुशरिकों के कदमों को, कि अगर ये अपने पैरों की तरफ भी देखेंगे ना, तो ये हमें पा लेंगे। तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, इनमें से अगर कोई अपने कदमों की तरफ देख ले तो यकीनन हमें भी देख लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो? यानी उनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिनके साथ अल्लाह हो, क्योंकि अल्लाह काफी है अपने बंदों को। इंसान जब अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है ना, तो फिर कोई उसको परेशानी, कोई उसको फिक्र ये नहीं रहती, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे बस में तो कुछ नहीं है, ना अपना बचाव है ना कुछ, लेकिन मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। फसयकफीकहुमुल्लाह, ए नबी, आपको अल्लाह ही काफी है। वहुव समीउल अलीम, और वो सुनने वाला भी है, जानने वाला भी। अल्लाह सब सुन रहा है, जो लोग साजिशें कर रहे हैं, जो लोग बुराइयां कर रहे हैं, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनता है, सब जानता भी है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा, और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह के रंग से बढ़ के? अल्लाह के रंग से ज्यादा अच्छा कौन सा रंग है? ये कौन सा रंग है जिसको अल्लाह ताला ने अपना रंग कहा? हम ये सोचते हैं कि शायद ग्रीन कलर जो है, हमारे यहाँ ज्यादातर यही समझा जाता है ना, उसको अल्लाह का रंग शायद समझा जाता है, या क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक में वहां पे ग्रीन कलर है, तो उसको हम समझ लेते हैं। या हम और कुछ रंग हैं जिनको हमने समझा हुआ है, काला रंग ये काबे के गिलाफ का रंग है, ये शायद है अल्लाह का रंग। ऐसा नहीं है। अल्लाह का रंग का मतलब क्या? अल्लाह की बंदगी का रंग, ईमान का रंग, दीन का रंग। और जे रंग वो चीज होती है, जब रंग चढ़ता है ना किसी चीज पे तो नोटिसेबल होता है ना। रंग क्या चीज होती है? नजर आने वाली चीज होती है ना, या छुपी हुई चीज होती है, नजर आती है। इसी तरह मोमिन पे जब ईमान का रंग चढ़ता है तो उसके चेहरे से, उसके हाल हुलिये से, उसकी हरकतों से, उसके मामलात से, उसकी आदात से अल्लाह का रंग नजर आता है। तो सिबगत अल्लाह क्या है असल में? सिबगत अल्लाह असल में ये है अल्लाह का रंग कि जब वो चढ़ता है किसी पे तो उसको देख के अल्लाह याद आ जाता है। सहाबा सिबगत अल्लाह में रंगे हुए थे। और याद रखे मैंने आपको जैसे बताया, सिबगत अल्लाह नेचुरल नहीं होता कि जैसे हम नेचुरल एक रंग के साथ पैदा हुए, सिबगत अल्लाह बाद में चढ़ाया जाता है। और देखिए जब किसी चीज पे कोई रंग चढ़ गया हो ना तो वो चीज नोटिस होती है, नोटिसेबल होती है, आंखों को नजर आती है। उसको तो रंग चढ़ना नहीं कहेंगे ना, कोई ये कहे कि रंग चढ़ा हुआ लेकिन वो आपको नजर ही नहीं आ रहा, ये तो नहीं होता ना। लेकिन हमारे यहां कहते हैं हम किसी को जज ना करें क्योंकि आपको क्या पता उसके अंदर कितनी नेकी हो, बाहर से अब वो चाहे जैसी मर्जी है। नहीं, अंदर का मामला अंदर है, मगर सिबगत अल्लाह जिस पे चढ़ता है ना वो नजर आता है। वो फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अंदर पता नहीं क्या है, उसकी नीयत बड़ी अच्छी है, उसकी ये है, बाहर कुछ नहीं नजर आ रहा, बाहर से फासिक फाजिर। हम कहें नहीं नहीं वो है अंदर से बहुत नेक है। सिबगत अल्लाह जब चढ़ता है तो बाहर नजर आता है और उसको देख के फिर इंसान को अल्लाह ही याद आ जाता है। ऐसी उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। हमें देख के भी क्या किसी को अल्लाह याद आता है? ये भी हमें सोचना चाहिए। हमें देख के क्या नजर आता है किसी को? कौन सा रंग नजर आता है? रंग तो बहुत सारे हैं दुनिया में, है ना? कोई वेस्ट का रंग है, कोई ईस्ट का रंग है, कोई फलां का रंग है, कोई फलां का रंग है। हमें देख के लोग क्या देखते होंगे? खुद सोचें अपने आप को कि क्या देखते होंगे लोग, उनको क्या याद आता होगा। और याद रखें, अगर किसी चीज के ऊपर सही से आपने रंग चढ़ाना हो तो क्या करते हैं? एक तो सफेद कपड़े पे बहुत अच्छा रंग चढ़ता है, मसलन आप अपने दुपट्टे तो रंगवाती रहती होंगी, आपने रंगवाना हो तो क्या करते? या तो सफेद रंग हो तो तब सही चढ़ेगा, या फिर क्या करना पड़ता है? अगर उस पर पहले से कोई रंग चढ़ाओ फिर उसी के ऊपर चढ़ा देती हैं? नहीं, उस रंग को पहले निकालना पड़ता है, फिर कोई दूसरा रंग चढ़ सकता है ना। तो अगर आप अपने ऊपर सिबगतुल्लाह चढ़ाना चाहते हैं ना, अल्लाह का रंग, तो पहले जो रंग पे हमने चढ़ाए हुए अपने ऊपर, कोई भी रंग हो सकते हैं, गैरुल्लाह के बहुत सारे रंग हैं, तो वो पहले निकालने पड़ेंगे। टाई डाई नहीं हो सकता यहाँ पे, कहीं कहीं कोई रंग है तो कहीं कोई रंग है, सिबगत अल्लाह तो एक ही रंग है। और जरा सोचें भी कि हमने सूरह फातिहा से लेके जिन्होंने अभी तक हमारे साथ ये सफर किया, आज इंशाल्लाह हमारा ये पहला पारा मुकम्मल होगा, पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, 30 सीढ़ियां उनमें से पहली सीढ़ी पे आप कदम रख रहे हैं। तो ये बताएं कि क्या पिछले रंग में से कुछ रंग छटा, कुछ निकला बाद में? वो तो सिबगतुल्लाह तो बाद में चढ़ना है, ये जो पिछला रंग है वो भी कुछ हटाए कि नहीं हटा? वो हटेगा तो आप तैयार होंगे अल्लाह के रंग को चढ़ाने के लिए? क्या पिछली सोच में, क्या पिछले जो जैसे जिंदगी थी उसमें कुछ फर्क आया? कुछ अंदर टूट फूट हुई है कि नहीं? नया इंसान तो बंदा बाद में बनता है, लेकिन पहले जो अंदर ऑलरेडी गंदगी है, जो ऑलरेडी रंग चढ़े हुए हैं, वो निकले हैं कि नहीं, या कुछ फर्क ही आया है? तो देख ले, अब यहाँ पे जो सिबगत अल्लाह की बात हुई ना, बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये सारा रुकू हमें अल्लाह के रंग में रंगने की तालीम दे रहा है। सहाबा का भी रंग वही था, वैसा ही ईमान हमारा चाहिए। तो हमें अल्लाह की इताअत का रंग अपने ऊपर चढ़ाना है, और क्योंकि अल्लाह का रंग, अब इसको इस तरह से ना लें, कोई नीला पीला ग्रीन ये नहीं सोचे, बस एक बात सोच ले, मुझे देख के लोगों को अल्लाह याद आ जाए। और कल जब अल्लाह ताला मुझे देखे तो उसको मेरे ऊपर प्यार आ जाए। बस अगर हम वाकई चाहते ना कि जैसे अल्लाह ताला ने इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, इस तरह हमें चुन ले, तो ये रंग चढ़ाना पड़ेगा। ये रंग अल्लाह को मतलूब है, ये अल्लाह की बंदगी का रंग है। तो देखिए, सिबगत अल्लाह और अल्लाह के रंग से कौन ज्यादा, कौन सा बढ़ के रंग है? लेकिन आज क्या मुसलमान इस रंग को पसंद करते? ये रंग किसी पे चढ़ा हो मुसलमानों को पसंद आता? नहीं, अगर मुसलमानों को भी पसंद नहीं आता तो हम क्या किसी और का, वो तो बात को छोड़ेंगे, कोई और पसंद करेगा नहीं करेगा उसकी तो परवाह नहीं करनी चाहिए। मुसलमान क्या कहते हैं ऐसे रंग को देख के? एक्सट्रीमिस्ट है, उसको पागल है, मुल्लानी है, क्योंकि उसकी हरकत, उसकी मामलात, उसकी आदत, उसका हाल हुलिया सब अल्लाह के रंग में रंगा हुआ ना, इसलिए। वनाहनु लहु आबिदून, हम उसी की इबादत करने वाले हैं। इबादत, इस्लाम का माना क्या है? सबमिशन, इताअत। और इबादत का माना क्या है? इंतहाई तौर पे अपने आप को जब इंसान झुका दे, बिछा दे, और इंतहा दर्जे की मोहब्बत के साथ, तो उसको कहते हैं इबादत। इबादत में दो चीजें होती हैं, इस्लाम का माना तो सिर्फ इताअत है ना, लेकिन इबादत इताअत से भी बढ़ के है आगे। देखिए, आप किसी की इताअत कर सकते हैं जबकि आपका दिल भी नहीं चाह रहा, जबकि आपको उससे कोई मोहब्बत नहीं है, जबकि आप बस मारे बांधेगी कर रही हैं, लेकिन जो इबादत है ना, वो मारे बांधे की नहीं होती, वो मजबूरियों की नहीं होती, वो किस तरह से होती है? ऐसी इताअत जो शदीद मोहब्बत के जज्बे से की जाए, किसी से आपको इंतहाई मोहब्बत है ना, इंतहा से ज्यादा मोहब्बत, जब आप उसकी बात को मानते हैं, उसको कहते हैं इबादत। आज इबादत का भी लफ्ज समझ लें, हम कहते हैं तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो इताहत को सिर्फ इबादत ना समझे कि मैंने उसका कहना मान लिया, कहना मान के उसके बाद फिर हसरतें करते रहते हैं, हाय हम तो बड़े अच्छे थे, वो दिन भी क्या थे जब मैं ऐसे घूमा करती थी, मैं ऐसे फिरा करती थी, मैं तो ये थी। वो जब शदीद मोहब्बत के जज्बे से किसी की इताहत की जाए, तो क्या उसमें ऐसी हसरतें होंगी, ऐसे आंसू आएंगे? हाय वो दिन बड़े ही याद आते हैं, मैं तो अच्छी ही थी वैसे। जिसे आप बहुत शदीद मोहब्बत करते हो ना, और उसका कहना मानते हो, तो फिर देखें कि उसको रख के देखेंगे क्या क्या होती है फिर इबादत। कुल अतुहाजुना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, कह दीजिए कि क्या तुम मुझसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वो तो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। अब ये उनको कहा जा रहा है जो यहूद और नसारा थे, कि तुम अल्लाह के बारे में मुझसे आर्ग्यू करते हो, उसके बारे में झगड़ते हो, झगड़ा किस बात का? हम दोनों का रब वही है, तुम भी तो उसी को मानते हो, तुम भी उसी को रब समझते हो। सोचो ना, एक गॉड को तो वो भी मानते हैं, चाहे ट्रिनिटी का भी जो अकीदा रखते हैं, تو وہ بھی نعوذ باللہ با فادر سن ہولی گوسٹ اس طرح سے وہ بھی بات کرتے ہیں، وہ یہودی بھی اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے جب ہم ایک خدا کو ہی ماننے والے ہیں؟ آج بھی جب مسلمان جھگڑتے ہیں آپس میں تو وہ بھی تو ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، پھر کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ کوئی دین کی طرف آ جائے تو اس سے کتنا جھگڑتے ہیں، اس پہ کتنے اعتراضات ہوتے ہیں؟ تو بھائی تم بھی تو اسی اللہ کو مانتے ہو، تو ہم اگر اسی کا کہنا مان رہے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ کس چیز کی پرابلم ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے پھر ہم نے تو اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیا، اور تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساری لسٹ دے دی جرائم کی کہ انہوں نے یہ 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 کیے، تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. دیکھیں پہلے آیا نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پھر آیا نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اب کیا آ رہا ہے نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کیونکہ یہ مسلم عابد مخلص یہ تینوں چیز ہوں گی تو صبغۃ اللہ چڑھتا ہے، اسلام عبادت اور اخلاص، یہ تین درجے ہیں، ہائیسٹ درجہ اخلاص کا. اخلاص کیا چیز ہوتی ہے؟ خالص چیز جانتے ہیں نا، خالص چیز. آپ کیا خالص چیز لینا چاہتے ہیں یا کھوٹی؟ ہمیشہ ہم چاہتے ہیں ہمیں خالص چیز ملے، ہے نا. کھوٹ کسی کو بھی پسند نہیں ہے، امپیورٹیز کسی کو پسند نہیں، کہتے ہیں پیور چیز دکھاؤ، پیور کپڑا، پیور گولڈ، پیور ہر چیز میں پیورٹی مانگتے ہیں.